ハレラーマハレラーマ
ハレラーマハレラーマ
ラーマラーマハレハレहरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है श्री राधा गिरिधारी इस्कान मंदिर सूरत में। रविवार के दिन भगवान श्री कृष्ण के संदेश भगवत गीता को उत्साह के साथ आप श्रवण करने के लिए पधारे हैं। संस्था की ओर से आप सबका स्वागत करते हैं। आप भाग्यशाली हैं कि छुट्टी के दिन पे फालतू समय बेकार गंवाने के बजाय भगवान के मंदिर में आते हैं। आप भाग्यशाली हैं। जिसने भी आपको ये रास्ता बताया वो आपका मित्र है, वो आपका हितेशी है। नहीं तो कली काल में छुट्टी के दिन यादों लोग सोए रहेंगे, बोलते आज सो के हमने बहुत सुख लिया। सोने में कोई सुख होता है क्या? मुर्दे के समान होता है सोया हुआ, मरे आदमी के बराबर है। छुट्टी के दिन या तो आदमी सोते हैं, नहीं तो बेकार के फालतू घर का पैसा खर्च करके बाहर जाके, घर में पकाते नहीं है, बाहर जाके इधर उधर पशु की तरह चलते हुए चरते हैं। जिसने भी आपको रविवार के दिन इस्कान मंदिर में चलना है, आरती का दर्शन करना है, हरि कीर्तन में भाग लेना है, भगवत गीता सुननी है और भगवान का प्रसाद पाना है, जिसने इतनी आपको शिक्षा दी वो आपका शुभ चिंतक है। वो ही आपका भला चाहने वाला है। और श्रील प्रभुपाद ने ये व्यवस्था पूरी दुनिया के लिए की है। एक व्यक्ति ने पूरी दुनिया के अंदर ऐसे बड़े महत्वपूर्ण केंद्र बनाकर, मंदिर बनाकर, समझदार बुद्धिमान जो जनता है उनको कलयुग के प्रभाव से बचाने के लिए, कलयुग ऐसा जंगल है जिसमें न पेड़ है न पानी है। कलयुग में चारों ओर आप समझते हैं कि शहर में रह रहे हैं, ये जंगल है, और ये ऐसा जंगल है जिसमें न पानी है और न पेड़ है कि छाया के नीचे बैठो अथवा प्यास बुझाओ। भौतिक जगत के जंगल में ये भगवान के मंदिर आध्यात्मिक ओयासिस है। ओयासिस का मतलब तपते रेगिस्तान में पानी का स्रोत और हरियाली और छाये के फलदार वृक्षों का अच्छा सा सुंदर स्थान है ये, जहां कोई भटकता हुआ मुसाफिर यात्री अगर आ गया तो सुखी हो जाएगा। छाया भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, नहीं तो मरुभूमि में प्यासे को पानी दिखता है लेकिन पानी होता नहीं है। इसको मृग तृष्णा बोलते हैं। दुनिया मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा समझते हैं किसको बोलते हैं? मई जून में गर्मी के कारण मृग जो होता है, हिरण जो होता है, प्यासा होता है और सामने देखता है तो पानी का सरोवर दिखता है। वो पानी नहीं होता है, वो धूप के कारण रेत में पानी दिखता है और हिरण तेजी से भागता है उधर पहुंचने के, तो उतना ही पानी दूर होता है, फिर दौड़ता है, फिर पानी उतना ही दूर होता है, और तब तक प्यासा हिरण थक जाता है और प्राण निकल जाते हैं। ऐसे मानव इस जगत में बस आगे पहुंचूंगा तो घर बन जाएगा, बाकी गाड़ी वो सामने खड़ी है, वहां तक पहुंचोगे तब तक सब कुछ समाप्त हो जाएगा, है ही नहीं। लेकिन मंदिर में आ गए तो आप सुरक्षित जगह पे आ गए, यह धोखा नहीं है, ये भगवान का घर है, यहां माया का प्रवेश नहीं है। बाहर माया है, जो नहीं है वो दिखाती है, माया का अर्थ है जो नहीं है वो दिखने में आए और जो है वो छुपा रहे। माया का काम है आवरण ढकना, किसको, जो असल है उसको ढक देती है और जो नहीं है वो दिखा देती है। जैसे अंधेरे में रस्सी को देख के आदमी सांप मान लेता है, इसको माया बोलते हैं, लेकिन असली सांप भी होता है और असली रस्सी भी होती है, लेकिन भ्रम हो गया। तो पानी तो होता है लेकिन उधर नहीं होता है जहां दिख रहा है। तो संसार में भटकते हुए सुख की खोज में लोग पागल हैं, लेकिन संसार में सुख है ही नहीं। सुख कहां है? आनंदमय भगवान के चरणों में सुख है, भगवान के भक्तों के संग में सुख है, भगवान की कथा में सुख है, भगवान के कीर्तन में सुख है। फिर भी हम केवल संडे के दिन सुख लेना आते हैं, बाकी छह दिन दुख को प्रेम से दुख का प्याला पीते रहते हैं कि संडे को जाके थोड़े सुखी हो जाएं। क्यों भाई, सच है कि झूठ है? छह दिन हम दुख के इतने शौकीन हो गए हैं, आदि हो गए हैं, नशई हो गए हैं कि उसको छोड़ना अच्छा नहीं लगता है। सुख सामने पड़ा है लेकिन फिर दुख हमको, फिर भी दुख को छोड़ने की इच्छा नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? नशा हो गया। नहीं, सच है कि झूठ है? नित्य भगवान की कथा सुननी चाहिए, और नहीं तो जहां आप रहते हो वहां ये भक्त आके नित्य कथा करने का भी प्रबंध करते हैं। छह दिन आप नहीं आ सकते हैं तो भक्त आपके घर में आते हैं, लेकिन कथा होनी चाहिए। कथा को बंद मत करो, भोजन सुबह दोपहर शाम शरीर को चलाने के लिए जरूरी है। ऐसे भगवान के नाम का जप और भगवान की कथा आत्मा के आनंद के अनुभव करने के लिए प्रतिदिन जरूरी है। प्रतिदिन आप अपने घर में कैसे कथा कर सकते हैं ये हम आपको बताते हैं आज। ये कथा भगवद गीता की, और इस कथा को लिख के आपके घर में आपके साथ जाने के लिए प्रभुपाद जी, आप कहते हैं हमको भक्त नहीं मिलता है, किससे कथा सुने? ये परम भागवत भक्त प्रभुपाद इस भगवत गीता के रूप में आपके घर चलने को तैयार। आप रोज नेम से एक श्लोक को निकालो और उसको बैठकर पढ़ो, कौन से समय पढ़े, जब तक आपको समय मिले तब पढ़ो। अब ये नहीं कह सकते सुबह 8 बजे मुझे ऑफिस का टाइम है, जहां ऑफिस चले जाओ, रात को 8 बजे घर आते हो, फिर भोजन करते हो, बैठे इसको एक श्लोक पढ़ लो। रोज नेम से एक श्लोक पढ़ने का अपने आप से वायदा कर लो, संकल्प कर लो, ये हो गया रोज का सत्संग। कितने लोगों के पास अपनी भगवद गीता की ये कॉपी है, सबके पास है कि नहीं है? ईमानदारी से नहीं है तो निश्चित रूप से इसको अपने साथ रखो, साथ में रखो। मोबाइल साथ में रखते हो, घर रख के जाते हो? हाँ, मोबाइल घर रख जाते हैं, साथ में रख जाते हैं, ले जाते हैं काय के लिए? हाँ, क्यों ले जाते हैं साथ में मोबाइल दिलीप भाई? हाँ, क्यों ले जाते हैं? पूछता हूं मैं, क्यों ले जाते हैं? बात करने के लिए। आप ज्यादा बात करते हैं कि लोग आपको ढूंढ के निकालते हैं आप कहां हैं ज्यादा? हाँ, आपको मोबाइल पे लोग ढूंढ लेते हैं, और ऐसे लोग ढूंढ लेते हैं जिनसे आप छुपना चाहते हैं, वो भी पकड़ लेते हैं आपको। हाँ, ये गीता अगर आप साथ ले जाओगे तो भगवान से रोज बात करने का आपको मौका मिलेगा। वो मोबाइल खर्च महीने का बिल भी देगा और बात भी दुनिया से कराएगा, और इसमें कोई बिल नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन रोज भगवान से बात करने का मौका मिलेगा। अब कौन है जो रोज भगवान से बात नहीं करना चाहता? कोई है जो भगवान से रोज बात नहीं करना चाहता? करनी है नहीं करनी, तो फिर रोज भगवत गीता को पढ़ना पड़ेगा। भागवत को आप कहें भगवत गीता 700 श्लोक है, हमने पढ़ लिया, तो फिर पढ़ो। और फिर क्यों पढ़े? तो फिर रोज रोटी क्यों खाते हो? कल खाई थी, फिर आज क्यों खाओगे? फिर कल रोटी खाई थी तो आज क्यों खा रहे हैं? आज फिर भूख लगी है तो आज फिर आत्मा को भूख लगी है, भगवद गीता पढ़नी चाहिए। अगर समझ में आ जाए अच्छी तरह से, और समझ में कब आ गई भगवद गीता? जिस दिन आप भगवान के भक्त बन गए उस दिन गीता समझ में आ गई, और भगवान के लिए काम करना शुरू कर दिया उस दिन गीता समझ में आ गई। क्योंकि भगवद गीता में तो भगवान अर्जुन को कहते हैं मेरे लिए काम करो, मेरे भक्त मानो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। तो क्या ये हम कर रहे हैं क्या? भगवद गीता समझ में आने का मतलब भगवान श्री कृष्ण के हम भक्त बन गए, और जब भक्त बन जाओ तो फिर भागवत को पढ़ो और रोज पढ़ो, और वो 15 साल तक आपका साथ देगी, रोज का आपका सत्संग चलेगा। हम आपको कहना ये चाहते हैं कि रोज अखबार पढ़ने की बीमारी से भागवत और भागवत के अमृत को पान करना अति उत्तम है। मैं इसलिए कह रहा हूं तो आप पढ़ते तो हो ही कुछ ना कुछ बेकार की चीजें, क्यों भाई? कितने लोग हैं अखबार नहीं पढ़ते हैं? 4-5 हैं जो अखबार नहीं पढ़ते हैं। मैगजीन अखबार ऐसे बेकार की चीजें जो नहीं पढ़ते हैं, बाकी सब इसका मतलब पढ़ते हैं ना, तो आपको पढ़ना ही कुछ है, तो फिर आप रोज शास्त्र को पढ़ने का नियम बनाओ। ये रोज थोड़ी देर भगवान से मुलाकात है। भगवद गीता पढ़ना इसका अर्थ है भगवान से बात करना, भागवत पढ़ना इसका अर्थ है भगवान के घर में प्रवेश करना। तो रोज मंदिर तो नहीं आ सकते, मैं समझता हूं मंदिर दूर है, जो आ सकते हैं वो भाग्यशाली हैं, लेकिन अपने घर में बैठकर अगर भगवान से बात करना चाहते हो तो भगवत गीता पढ़ो, भगवान के घर में प्रवेश करना चाहते हो तो भागवत पढ़ो। लेकिन ये नित्य नेम बना लो और देखो आपका जीवन कितना सुखमय हो जाता है दुखमय संसार के अंदर रहते हुए। दुखमय संसार के अंदर रहते हुए सुखमय जीवन को बनाने के लिए रोज कम से कम भगवान से बात कर लिया करो, भगवत गीता पढ़ के भगवान के घर में प्रवेश किया करो भागवत पढ़ के, और भगवान का नाम जपने का गिन के अगर नाम जपेंगे, जितना ज्यादा नाम जपेंगे उतना धन असली आपका आपके अकाउंट में जमा होता जाएगा। सबको बहुत शौक है शाम तक नोट गिनने की, कितना आज हो गया। धंधे वाले तो रोज गिनते हैं, नौकरी वाले महीने में एक दिन गिनते हैं बेचारे, बाकी दिन दिन गिनते हैं। लेकिन ये धन, राम नाम का धन, हरि नाम का धन, ये आप रोज थोड़ा गिन लिया करो, ये गिनती आपका परमानेंट अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है, कभी खत्म नहीं होगी। कौन मूर्ख है जो धन इकट्ठा नहीं करना चाहेगा, वो धन जो कभी बेकार नहीं होगा, वो धन इस जन्म के बाद भी हमारे काम आएगा। कौन मूर्ख इस धन को इकट्ठा नहीं करना चाहेगा। हम तो यहां मंदिर में एक माला का जप करा के आपको अभ्यास कराते हैं कि आपको इस धन को कैसे इकट्ठा करना है, सीख लो, ट्रेनिंग देते हैं, और फिर जाके रोज प्रतिदिन अपने घर में कुछ नहीं करना है, एक माला के ऊपर बैठ के भगवान का नाम जपना। जैसे आप भगवान का नाम घर में जपेंगे, भगवत गीता भागवत पढ़ेंगे, तो आपका सारा घर अपने आप वैकुंठ बन जाएगा, और जो घर में बनेगा वो प्रसाद हो जाएगा, और फिर आपका जीवन अपने आप में उत्तम हो जाएगा। क्योंकि भगवत गीता पढ़ोगे तो कृष्ण घर में आ गए, भगवान का नाम लोगे तो भगवान आपकी जीभा के ऊपर आ गए, फिर आप जो कुछ खाओगे तो अपने आप प्रसाद हो जाएगा, तो आपका जीवन इस संसार में, दुखमय संसार में सुखी हो जाएगा। कितना आसान है, मुश्किल है ये काम करना? सर के बल खड़े होकर एक बात तो नहीं कर रहे हैं, सांस बंद करने के लिए भी नहीं कह रहे हैं, घर छोड़ने के लिए भी नहीं कह रहे हैं। वही भोजन जो करते हो बनाओ, भगवान को भोग लगा रहो, वो जो रोज बेकार की अखबार में आधा घंटा बाथरूम में बैठ के पढ़ते हो, उसको बाहर बैठ के भगवान का नाम गीता पढ़ लो। यही तो रोज करते हो ना, पैसे गिनते हो, उसकी जगह से भगवान के नाम गिन लो। काम तो वही हम आपको बता रहे हैं जो रोज कर रहे हो, लेकिन वो काम करके भी दुखी हो रहे हो, इसलिए ये काम करके सुखी हो जाओ। कि भाई मुश्किल है कुछ काम, कोई ऐसा है जो ये नहीं कर सकता? तो आपको सुख मिल रहा है? हाँ जी, ये काम करने से सुख कुछ मिल रहा है, बोलो। चेहरे किसी के ऊपर दिख नहीं रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ, नहीं मिल रहा है। भक्त कहते हैं ये सुख नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? आपको बोतल दे दी मधु की कि जाओ पियो मीठा है, लेकिन ढकना खोलना ही नहीं आया, बाहर से चाट रहे हो, तो मिठास मिलेगी? हाँ, बोतल है मेरे पास मधु की। हाँ बहुत अच्छी है, चाटो, बड़ी अच्छी है मधु। तो बोतल को चाटा, वो तो कड़वी है। अरे अंदर मधु मीठी है, लेकिन ढकना तो खोलना आना चाहिए, नहीं तो बोतल तो फोड़नी आनी चाहिए। न तो बोतल फोड़ते हैं, न ढकना खोलते हैं, और मधु कैसे पिएंगे? बोतल फोड़ने का मतलब है घर बार छोड़ के मंदिर में आके रहना। वो तो लाल कपड़े वाले बैठे हैं ना, रोज राजभोग खाते हैं, रोज राजभोग भगवान को भोग लगा के खाते हैं। वो तो आ गए बोतल तोड़ के, आप बैठे मधु में नहा रहे हैं। आपको कहते हैं ढकना खोलना सीखो सिर्फ, तो भी मीठा मुंह हो जाएगा। अपने घर में यही काम करो, ये ढकना खोलना हो गया और वो बोतल तोड़ना हो गया। बोतल तोड़ने वाले बहुत कम है, लेकिन ढकना खोलने वाले तो बनो कम से कम। हरे कृष्णा। प्रभुपाद ने तो सबको बोतल तोड़ने का ही शिक्षा दी थी उस समय में। आओ रहो, 10 साल भी रहो, 5 साल भी रहो यहां, तो कम से कम तुम पक्के होके वापस जाओगे तो तेरा जीवन अच्छा रहेगा और जो तेरे साथ रहेंगे वो भी सुखी रहेंगे। वैसे कुछ समय तो भगवान को देना चाहिए जीवन में, भगवान की सेवा के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। अब आप सब लोग यहां आए हैं, भगवान की सेवा करने आए हैं कि भगवान से सेवा लेने आए हैं? अंदर जाके देखो अपने, सेवा करने आए हैं कि सेवा लेने आए हैं भगवान से? हाँ दिलीप भाई कहता है भगवान की सेवा करने आए हैं। आप सोचो क्यों आए, भगवान से सेवा लेने आए हैं कि करने आए हैं? अगर लेने आए हैं तो सुखी हो जाएंगे, और करने आएंगे तो परम सुखी हो जाएंगे। अब परम सुखी होना है कि सिर्फ सुखी होना है? सुखी होने का मतलब है कि शाम तक, और परम सुखी होने का मतलब है सदा के लिए। बोलो कौन सा चाहिए? प्रसाद थाक खा के घर चले गए तो शाम तक सुखी, और बर्तन धो के चले गए तो आजीवन सुखी। बर्तन धोने वाला एक भी नहीं है यहां बैठे होने वालों में। जो बर्तन धोने वाले हैं बेचारे बर्तनों को देख रहे हैं कि कब खाली होंगे हम धोएं। तो ये हम आपको रहस्य बता रहे हैं। मन भगवान के मंदिर में आए तो मौका ढूंढना चाहिए, थोड़ी सेवा मिल जाए, चाहे मंदिर के झाड़ू निकालने की, चाहे चप्पल संभालने की आने वाले भक्तों के, चाहे बर्तन धोने की। अगर सेवा मिल जाए तो समझ लो कि भगवान ने आपको अपना पहचान के अपना बना लिया। जैसे घर के अंदर जो अपने होते हैं वो सेवा करते हैं, मेहमान होते हैं वो खा के चले जाते हैं। दोनों में डिफरेंस लग रहा है? तो आप किस में शुमार होना चाहते हैं? भगवान के मेहमान हो जाना चाहते हैं कि भगवान के घर के सदस्य बनना चाहते हैं? हाँ बनना सदस्य जाते हैं, लेकिन काम मेहमान जैसा करेंगे। बहुत से लोग घर में ही मेहमान होते हैं, पानी भी बोलते हैं किसी को पिलाओ अपने घर में नहीं। तो आज के सत्संग से हम आपको ये संदेश और शिक्षा दे रहे हैं, जब मंदिर में आओ तो सेवा का अवसर ढूंढो। प्रभु जी ये तुलसी का टेबल इधर रखना, मैं जप कर रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो तू जप में क्या कर रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका अर्थ क्या है? हे राधा रानी कृपा करके मुझे सेवा दो, तो वही तो दे रहा हूं। हाँ तो वही तो दे रहा हूं। नहीं अरे सेवा दे रहा हूं, करो ना मंदिर में। नहीं मैं जप करूंगा बैठ के। तो सेवा कर भाई, मांग रहा है सेवा। ये बहुरूपियापन है कि नहीं है? हाँ बांटने वाले ज्यादा होते हैं कि लेने वाले ज्यादा होते हैं? जब बांटने वाले ज्यादा हो जाएं तब समझ लो कि हम आध्यात्मिक में प्रगति कर रहे हैं। मां सबसे आखिर में खाती है घर में, क्यों भाई? ये स्त्री माताएं हो बताओ, घर मां पहले घर में सबसे पहले खाती है कि आखिर में खाती है? सबको खिला के फिर खाती है, वो घर की मालकिन होती है। पहले या तो बेचारे बूढ़े बुजुर्ग को या बच्चे को खिलाया जाता है। ना आप बच्चे हो ना बूढ़े हो, अच्छे खासे जवान हो तो सेवा करने के लिए इच्छा पैदा करो, लालायत रहो कि मंदिर में हमको सेवा मिले, हम भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं। तब भगवान आपको अपना मान लेगा, तब फिर आपका सब दुख दूर हो जाएगा। जब तक मांगने 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 किए, जब तक देखो हमने मांगा नहीं अपने आप आ गया। जब तक मांगने 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 का भगवान बोला कब से तुमको दे रहा हूं, तेरे को दो आंखें दे दिए देखने के लिए, ले लूं एक वापस? आपने देखा कभी बच्चा कहता है पैसे दो, बोला कल 10 रुपए नहीं पहले मैं वापस लूंगा या जाओ, ऐसे बोलते ना कि जो दिया है ये काफी है जाओ, ज्यादा मांगते तो पहले वाले वापस ले लूंगा। तो तेरे को दो आंख दिए, लू एक वापस? नहीं नहीं ये तो दोनों रहने दो। नहीं नहीं कुछ और आंख दो, बोलो तो चश्मा लगा लो, चार कर लो, और क्या करोगे? देने भगवान से लेने जाने वाले से भगवान को देने जाने वाला बड़ा होता है। तो मंदिर में भगवान की सेवा करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन सारे लोग मंदिरों में भगवान से लेने के लिए जाते हैं। चिट्ठी भगवान को इतनी बड़ी पकड़ा के आते हैं, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। सच है कि झूठ है? इसलिए भगवान उनको पहचानते भी नहीं है। जो मांगते हैं मिल जाएगा, जाओ इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा, एक जन्म लेना और इतना तुमने मांगा है इसे कब खा के खत्म करोगे? भगवान मुझे 50 लाख रुपया चाहिए, तेरे जन्म में तो तेरे को 3 बार बाईपास कराना पड़े तब भी 20 लाख नहीं खर्चा होगा, तो दोबारा जन्म लेके आना पड़ेगा तब खर्चा होगा ना, इतना क्यों मांगते हो कि ज्यादा जन्म लेने पड़े? इतना ही मांगो जो एक जन्म में काम आ जाए। ये सच है कि झूठ है बताओ? भाई ज्यादा तुम्हारा है तो तुम्हें भोगना पड़ेगा ना, इस जन्म में तो भोग नहीं पाओगे तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? दे लो, तो ये मूर्खता नहीं हुई? क्या मांगना चाहिए खड़े होके? हम तुम्हारे जो मेरे हित में है वो आप कर लीजिए, जो आपको मेरे लिए अच्छा लगे वो आप कीजिए, मेरे मूर्ख की इच्छाओं को मत सुनिए। मैं अपने अहित की बात कर जाऊंगा मैं नहीं समझ पाऊंगा। आप हमारे पिता हैं, माता हैं, सखा है, बंधु हैं, आप मेरे जो हित में हैं वो मेरे लिए कीजिए, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगता। पढ़ते भी हैं तुम्हें माता चाहे पिता, लेकिन कमा के हम हमारे बेटे को देंगे कि बात तुम्हारे को कुछ नहीं देंगे। सब कुछ तुम हमारे हो लेकिन तुम्हारे को देंगे कुछ नहीं, तुमसे कुछ अभी भी लेंगे। इसलिए भगवत गीता को जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि भगवान की सेवा करने से सुख मिलता है। भगवान से मांगने वाले इच्छा करने वाले अच्छे हैं लेकिन वो सुखी नहीं होंगे, क्योंकि इच्छा करते हैं काय के लिए? भोग के लिए। इच्छा आदमी क्यों करता है? और भोग के गर्भ में रोग पलता है। भोग के गर्भ में रोग पलता है और वो जन्म लेगा रोग, भोग से रोग का जन्म होता है। इंद्रिय तृप्ति के सुख में दुख का जन्म होता है। ये भगवत गीता के श्लोक जब पढ़ोगे, ये संस प्रसजा भोगा दुख योन्य एवते, ये संस प्रसजा भोगा, जो भोग इंद्रियों के विषयों में आसक्त होने से मिलते हैं, दुख योनि एवते, वो दुख की योनि है, दुख का गर्भ है, उसी सुख में दुख समाया हुआ है। जैसे शुगर की बीमारी वाले को जलेबी खाने में बड़ा मन करता है, तो जलेबी को खाएगा तो सुख मिलेगा, लेकिन उसी सुख के गर्भ में इंसुलिन की इतनी सुई लिखी हुई है, वो लगेगी। उसी सुख में जलेबी के बजाय 5 किलोमीटर चल के आ जाएगा और करेला खाएगा तो सुखी रहेगा, लेकिन खाएगा जलेबी और लगाएगा सुई। तो दुख के अंदर, सुख के अंदर दुख है कि नहीं है? तो जो इंद्रियों से इंद्रिय तृप्ति में सुख मिलता है, उसके अंदर दुख समाया हुआ है, और दुख उसी के अंदर से पैदा होता है, जन्म लेता है। और इस सुख का आद्य अंत वंत, इसका आदि भी है और अंत भी है। ये सुख शुरू होगा फिर खत्म भी हो जाएगा। आज तक जो आपको जीवन में सुख मिले वो सदा रहे क्या? खत्म हो गए कि नहीं हो गए? तो उनका आद अंत है ना। इसलिए वो कौन सा सुख है जो शाश्वत है? ब्रह्म सौखम अलोकम अनंतम, जो अनंत सुख है वो कैसे मिलेगा? ऋषभदेव भगवान कहते हैं, महाराज भरत तो तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करने से निरंतर रहने वाला ब्रह्म सुख मिलेगा। इसलिए दुख योनि एवते आद्य अंत वंत कौन्तेय नतेषु रमते बुद्धा, बुद्धिमान ऐसे इंद्रियों के सुख में रमण नहीं करते। तो भगवद गीता पढ़ेंगे, जैसे हमने कहा आप भाग्यशाली हैं मंदिर में आए हैं, तो आप बुद्धिमान हैं। हमने पहले कहा कथा शुरू करने से, तो बुद्धिमान लोग ऐसे सुख में आसक्ति नहीं रखते हैं जिसकी जिसका शुरुआत भी हो और अंत भी हो और जिसके गर्भ में दुख हो, तो फिर सुख कैसे उनको मिलेगा? भगवद गीता पढ़ोगे तो आपको एक शिक्षा मिलेगी, जीते जी मरने से पहले अगर हम काम और क्रोध के वेग को सहना सीख गए तो फिर हम सुखी हो जाएंगे। शक्नोति यशोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम स युक्त स सुखी न रहा। वो नर सुखी है, वो वीर पुरुष सुखी है जो जीते जी काम और क्रोध के वेग का सहन करता है। कैसे करता है सहन? अकेला तो नहीं कर सकता है। बोला वो मेरे से जुड़ा हुआ है, संयुक्त, क्योंकि वो मेरे से जुड़ा हुआ है, मेरी सेवा में लगा हुआ है, इसलिए मैं उनको बुद्धि और शक्ति देता हूं, आत्मबल देता हूं कि वो काम और क्रोध के वेग को सह लेगा। तो हमारे दुख का और पाप का कारण क्या है? भगवद गीता से हमको मिलेगा, कामेश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव। रजोगुण लोभ हमारे पाप का कारण है, हमारा शत्रु है। ये भगवद गीता तब पढ़ेंगे तब पता लगेगा कि ये शत्रु हमारे अंदर बैठा हुआ है, इसको खदेड़ के बाहर निकालना है। ये रोज पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो हमारी आपसे कर बद्ध विनती है कि ये प्रभुपाद जी के द्वारा भगवत गीता और भागवत अपने घर में नित्य पठन पाठन के लिए रखो, इसका रोज पाठ करो, नेम से करो, नित्य करो, इसमें एक दिन भी बाधा मत डालो, भगवान के नाम का जप करो, तो भगवान की कृपा से आपको इस संसार में दुख सहने की शक्ति आ जाएगी और दुखों के बीच में मुस्कुराते हुए भगवान का दर्शन करते हुए ये जीवन बीत जाएगा। थोड़ी सी तकलीफ आएगी तो कोई बात नहीं, तपस्या करके सह लेना। तो भगवत अनंत सुख ब्रह्म सुख प्राप्त होगा जो आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा, उसके भक्त बनने का संदेश और आदेश आप भाग्यशाली हर रविवार को आते हैं। अब इसको अपने दिनचर्या में रोज घर में शुरू करो और जब रविवार को मंदिर में आओ तो उस गेट से लेकर कोने कोने तक कहीं तिनका भी नजर आए तो उसको उठा के साफ कर दो। आपका दिल भगवान साफ करता जाए। जैसे ये मन में भाव आएगा भगवान कहेगा अब ये मेरा है, अब इसका शिक्षा दीक्षा पालन पोषण मैं करूंगा क्योंकि ये मेरे घर में सेवा कर रहे हैं। इस घर में काम करने वाले को भी भोजन भाजन देने का घर का मालिक प्रबंध करता है ना, तो इस मंदिर का मालिक तो राधा गिरिधारी है। और जो थोड़ी सी भी सेवा करता हुआ इनको दिख गया उसके पालन पोषण का भार वो अपने ऊपर उठा लेगा और उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, वो समर्थ है, उदार है, कृतज्ञ है। आपने छोटा काम किया कभी भूलेगा नहीं, कभी नहीं भूलेगा। ये चेतन महाप्रभु कहते हैं श्री कृष्ण के गुण भक्त वत्सल कृतज्ञ उदार समर्थ। तो सेवा का अपने अंदर भाव पैदा करो, इसी का नाम कृष्ण भावना है। ये कृष्ण भावना है। कृष्ण जगत गुरु है, उसमें मंदिरों का प्रचार कृष्ण द्वंदे जगत गुरु में। और ये हमारे हैं, हम इनके हैं, ऐसा मन में भाव पैदा करो। ये कृष्ण हमारे हैं, ये मंदिर कृष्ण का है, हम कृष्ण के हैं, तो ये हमारा है। अब इसको इसकी सेवा हमारे ऊपर है। ऐसे भाव मन में लाओगे तो आपका मन में मंदिर में आना सार्थक, मानव जन्म सार्थक, इस जन्म में कृष्ण भावना प्राप्ति आपका ध्येय, तो आप निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो आप एक माला का जप कीजिए अभ्यास करने के लिए। आज सेवा कौन करना चाहेगा देखेंगे उस भाग्यशाली को। वैसे भगवान ने सीसी कैमरा लगाई हुई है, चंद्रमा रात को सूर्य दिन को, आप जहां भी हिलते हो आपका फोटो निकलता है। सेवा करने वालों की रील तैयार होती है, इसलिए ऐसे मत समझो कि